कि हमारे में ये गुण है, हमारे में ये बात है। वो कहते हमारे में है क्या, हमारे में तो अवगुण है भाई, हमारे तो कमियां है, वो अपनी है, जो गलती है वो हमारी है, और जितनी अच्छी बात है अच्छाई है वो तो ठाकुर जी की है, भगवान की है, हमारे है ही क्या। एक संत ने कहा था कि घोड़ी होती है जिस पर दूल्हा चढ़ा रहता है तो वो घोड़ी नाचती है, बड़ी राजी होती है कि मेरे इतने गहने हैं, ऐसे कपड़े हैं, ऐसे ऐसे मेरे श्रृंगार हुआ हुआ है, तो ये नहीं समझती कि तेरा श्रृंगार नहीं है, दूल्हे का श्रृंगार है। और जब वहां से वो उतर गया तो श्रृंगार उनके साथ में ही, ऐसा किसी में गुण दिखता है तो ठाकुर जी का है, उसका भजन करता है उसमें लगता है तब होता है, नहीं तो बात वो अगर नहीं हो तो भगवान का संबंध नहीं है तो क्या है ये भाई। इतने इतनी बड़ी बत्तियां जलती है, इतनी इतनी आवाज होती है सब ही, परंतु वो बिजली के साथ संबंध होने से थोड़ा सा ऐसे हो जाओ फिर जयराम जी फिर क्या। ऐसे भगवान के साथ संबंध होने से जो वो आता है वो यद यद विभूति मत तत्व श्रीमद ऊर्जित में हुआ तत्वदेवावगत तत्व मम तेजो संभवम। भगवान ने कहा भैया यद यद विभूति मत सत्व जहां जहां विभूति वाले आज देखती है, जो कुछ विलक्षण दिखती है, बलवान दिखती है, विचित्रता दिखती है, लक्ष्मी दिखती है, जो कुछ दिखती है मम तेजोंश संभव मेरे तेज के किसी अंश से उत्पन्न होने वाली है यह शक्ति। तो मूल में शक्ति तो भगवान की है, भगवान से आई हुई है। मनुष्य अपनी जान करके वो अभिमान करता है कि हमारे में ये है, अरे तुम्हारे में नहीं है भैया, ये तो ठाकुर जी की है। तो अच्छी होती बात सब ठाकुर जी की होती, अपने तो अभिमान अभिमान आ सकता है, जो संतों में वो अभिमान नहीं आता, वे जानते ही नहीं हमारा कोई गुण है, हमारे में क्या है, हम तो भगवान के ठाकुर जी के है और ठाकुर जी का ही मानता है। आज तक ये आता है कि मेरे द्वारा ऐसे कैसे काम हो गया, इतना काम कैसे हो गया, वो हो गया इसी रीति से कि तुम अपना नहीं मानते, और जहां अपना माना तो वहां गलती हो जाती। हनुमान जी महाराज जब महाराज सीता जी की खोज के लिए गए तो दिन में गए, रात्रि होने पर लंका में प्रवेश किया, रात्रि पर ढूंढे खूब जगह फिरे, फिर सीता जी का विभीषण से पता लगा, वहां रहे, रावण आया, वो सब घटना देखी, उसके बाद में महाराज वो सब काम किया और वहां से शिक्षा मिली। वो कहते हैं वो त्रिजा कहती है कि एक सपने रावण बांदर लंका जारी, सपने में हमारे देखा सपने में जो बांदर ने लंका भाग दी और जादू था सेना संहार, राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। तो हनुमान जी ने देखा कि ये बात तो ठीक है, हमें करना है भाई, ये तो काम करना, पूछ को तो आए नहीं थे वहां से कुछ भी, और जामवन ने इतना ही कहा कि बस तुम खबर लेकर आ जाना और कर, और कुछ नहीं करना, श्री रघुनाथ जी महाराज सेना सहित आएंगे, रावण को मार करके ले जाएंगे, देवदास जस गाएंगे, ऐसी बात वो कही थी हनुमान जी को, वो ही माता सीता को कह दी। अब वो लंका जला दी थी, ये बात कहां से मिली, वो त्रिजटा से मिल गई, जब लंका जा रही तो लंका को तो बालना है, अब माने कैसे भी कहां से आग लावे कहां से आग लगावे। तो वह रावण के वहां पर गए तो वे कह रहे क्या करो, इसकी पूंछ के आग लगा दो। तो हनुमान जी के भाई सहाय शारद में जाना, सरस्वती ने सहायता कर दी, अब सब सामग्री मिल जाएगी, अपने कोई जुटाना ही नहीं पड़ेगा, आप साहब भी तेल ले आ, आप साहब भी बीज लगा दी, लंबा लगा करके तेल सींच करके आग लगा दी। अब भगवान हनुमान जी कहते हैं कि ठाकुर जी ने काम तो सब कर दिया, इतना करा अपने लगा दो, छोड़ो छुआ दो क्या है, अरे कूद करके ऊपर चढ़ गए, अरे वो घुमाया महाराज। गोस्वामी जी ने कहा कि ये भगवान हनुमान जी महाराज है और बूंदिया उतर है, कोई कड़ाई है लंका बारे में बस बूंदिया उतर है, जो घुमाने लगा तो जगह महाराज कहा कि मृगांक करते हैं मृगांक, अब दवाई बनाते हैं बढ़िया, भट्टी चढ़ाई है और जो बनेगा बढ़िया। और एक कवि ने कहा है कि भगवान से विमुख होते हैं सब समान थे प्राणी, रामायण में गया है कि मुर्दे के समान होता है, तो मुर्दा होते तो आग लगाड़ी होती, भगवान से विमुख है तो मुर्दा तो है ही, आग अपने लगा दो, मुर्दा भागने लायक होता है उनका, ऐसे हनुमान जी ने कर दिया। तो हनुमान जी की सामग्री आप ही मिल गई, कोई विचार भी नहीं था और ऐसे ही मिल गई, वहां जो त्रिचा ने कह दिया या सामग्री मिल गई तो भाई अपने तो उसी से ही कर रहे, इतना काम किया समुद्र में पूछ बुझाई पर हनुमान जी को प्यास नहीं लगी, रात्रि के समय संजीवनी लाने को गए और प्यास लग गई बहुत जल्दी, इतनी आग लगा दी प्यास नहीं लगी, प्यास यहां लगनी चाहिए। तो बात क्या थी, वहां तो भगवान कुछ काम हम तो कर ही नहीं सकते। जामवान ने कहा तुम बलवान और भगवान का अवतार, भगवान का काम करने लिए अवतार है, तब वहां गए। और वहां संजीवन लाने गए, चले वो प्रबंधन सुत बल भाखी, प्रबंधन सुत हनुमान जी के बल भाग, हाँ अभी लेता हूं मैं, अभी लाता हूं, वो अभी लाता हूं जिसका मिला महाराज। कौन? कालनेमी। ये कालनेमी कौन था? अभिमान था ये। और वो ही लगा बाण भरत जी का, किस गए? क्यों कालनेमी गए? अभिमान था ना उसके लगा कि मैं ऐसा ऐसा करने बाण। तो हनुमान जी के भी मन में आ गया तो वो भी छूटे अछूत नहीं बचे। अगर नहीं आया तो जम सक गया तो भगवान तो भगवान का बगत रहते आइए साथ में, उसी की कृपा से होता है, हो रहा है, होगा। हम खुद चिंता करेंगे की बात की, चिंता करना है ये तो भगवान का तिरस्कार करना, अपमान करना है। भगवान के हम भरे भगत है, भगवान हमारे हैं, तो हम अपनी चिंता क्यों करें? चिंता तो दुनिया की मिटा देना चाहिए, भगवान के भक्त तो दुनिया की चिंता मिटा दे रहे, चिंता क्या करते? जैसे कल कहा था ना, वह प्रहलाद कहता राशो हरी हरी तो संकट करे, भरे नाम लो भगवान का नाम लो, क्या घबरा दे, क्या भगवान का नाम लो, वो तो औरों को उद्देश्य दे रहे हो। अरे भगवान का आश्रय लो, क्या करते हो, डरना कैसे, किस बात का है, भय है ही नहीं तो अभय, हम सब तो अभय रहते हैं। तो भवंती संपदम देवी भुजात से भारत, कहते हैं भारत वंशोद्भव, भैया देवी संपत्ति लेकर के जो पैदा हुआ है उसमें ये भवन ये गुण होते हैं, इन गुणों को लाना नहीं पड़ता है। वो भगवान का भजन जब चिंतन एक ही काम करते रहते हैं। भगवान कहते हैं योग क्षेम वहाम्यहम अनन्यास्तो माम ये जना परिपास, जो जन अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं रात दिन, उनका योग क्षेम वहाम्यहम अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना और प्राप्त है उनकी रक्षा करना, ये दो काम मेरा है। तो जितनी देवी संपत्ति शुभ गुण है वे प्राप्त हो गए, उनकी रक्षा करना और जितनी कमी है उसकी पूर्ति करना, ये सब का सब काम भगवान की जिम्मेवारी है। भक्ति का तो बस एक ही, जैसे बच्चा होता है वो तो माँ माँ करता है, माँ माँ, वो माँ के नाम का जप करने का महात्म्य ये भी नहीं मानता, ये नहीं है कि माँ माँ करता हूँ इस जप से मेरा निर्वाह होता है, ऐसा भाव नहीं होता। माँ को तो पुकारता है, माँ नाम प्यारा लगता है। ऐसे सच्चे भक्त होते उनकी ये भी नहीं कि नाम जपता हूँ तो मेरा क्या लगता है, अरे नाम तो मीठा लगता है, माँ माँ अच्छा लगता है, इस बात से माँ नाम पुकारता है। तो भगवान का नाम तो मीठा लगे, प्यारा लगे, इस बात रात दिन लेते हैं, इससे हमारा हो जाएगा, हमारा ठाकुर जी कृपा से होगा, भगवान करते हैं कृपा उससे काम होगा। तो उसके भाई ये भी अभिमान नहीं होता, जप का, कीर्तन का, सत्संग का, स्वाध्याय का, इसने कोई अभिमान नहीं होता। ये हमारे गाय का, ये तो ठाकुर जी का काम है, मीठे से मीठा है, बढ़िया से बढ़िया है, अच्छे से अच्छा समय है, वो समय भगवान में लगाना है, बल थोड़ा ही है ये, वो भजन का भी बल नहीं मानते, बल तो कृपा का ही मानते, ठाकुर जी कृपा है यही बल है, हमारे पास बल का है, हमारे पास है क्या। अरे हनुमान जी कहते हैं कि ना जाना वो नहीं कछु भजन उपाय, भजन का उपाय जानते नहीं, हनुमान जी जानते ही नहीं, वो कौन है भी जानने वाला, भी हनुमान जी जानते ही नहीं, भजन उपाय मैं जानता ही। तो क्या है ये उनकी सरलता है, नम्रता है, सीधापन है, अपने में ऐसा कोई गुण भान ही नहीं होता कि मैं इतना बलवान हूँ, मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, ऐसे भजन करता हूँ, इतना मैं भगवान का भक्त हूँ, आप जैसे करते हैं। इस बार अवतार भी लिया तो महाराज भगवान शंकर ने सेवा करने के लिए बांदर का अवतार ले लिया, पर मनुष्य में तो खाने पीने को चाहिए, रहने को चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो खाने की जरूरत नहीं, वो भोजन करने के ज्यादा नहीं, रूख रूप में बैठे रहते हैं, और मकान की जरूरत नहीं, वृक्ष बैठे ही पड़े हैं, आपने कई छाजे पर बैठ गया मकान, कोई जरूरत नहीं, मकान की जरूरत नहीं, अरे कपड़े की जरूरत नहीं, किसी बात जरूरत नहीं, और अशुशल जरूरत नहीं, दांत और नख हमारे पास है ही, लाद उनका है ही, अपने कोई अशुशल की जरूरत नहीं, किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं। अरे ठाकुर जी महाराज जंगल में रहते थे तो उनकी सेना हो तो सेना के लिए कितना राशन चाहिए, और ऐसी सेना आई जो महाराज कुछ रिकॉर्ड ही खर्च नहीं, सभी अब जंगलों में रहे बंद में बड़का में तैयार, सभी मुख ही बजाओ निवास भेरी भेरी बजाओ, अपने मुख से ही बहुत बाजा बजा, अबे जरूरत नहीं किसी बात की जरूरत नहीं। हनुमान जी महाराज ने सेवा की तो विचार किया कि सेवा के लिए कुछ भी आवश्यकता हो तो हमारा आवश्यकता ही नहीं, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, निर्वाह की भी जरूरत नहीं, ठहरने बैठने के लिए कोई जरूरत नहीं, किसी छाजे पर बैठ जाए, किसी वृक्ष पर बैठ जाए, उगड़ पर बैठ जाए, वहीं अपना भोजन पा ले, वहीं अपना अन्न से रहे, काम करने को तैयार, लाल सपेट मार के लाखों को मरा, पान फूल खाए, शान बांधना बिगाड़ दी, रसा कर दी ऐसी। राक्षस बड़े बड़े थे, बलवान वे, समझते क्या है नर बानर आहार हमारा, ये तो हमारा भोजन है, भोजन कर जाएंगे। तो उन्हें कहा रे भाई ने कि भाई उस दिन क्या हनुमान जी आए, उस दिन तुम्हारी भूख नहीं थी क्या, उस दिन कोई उपवास था क्या, कोई नियम लिया था, खा क्यों नहीं गए, खा जाओ हमारे दांत टूट जाए, मुश्किल हो जाए खाना, समझे। हनुमान जी महाराज वो तो मुक्का देकर दांत तोड़ दे, उनमें भी अभिमान आ गया कि मैं कर सकता हूं, तो ये अभिमान राक्षस महा दुखदायी सौभात जो छूटे इस दुष्ट से सोई पावे शांत, ये बड़ा राक्षस है। इस वास्ते ताते कृपे करे कृपा ने दूरी, सेवक पर ममता अधिक पूरी, सेवक पर बहुत ममता होती है। इस वास्ते भगवान ये संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमाना, देवी संपत्ति का अभिमान नहीं, भजन का भी अभिमान नहीं, हम कुछ करते हैं वो कहते हैं ठाकुर जी कृपा से हो रहा है, अरे कृपा से होता है वो भजन बड़ा विचित्र होता है, देवी संपत्ति आदि बड़ी विचित्र ढंग से आती है, आश्चर्य आता है जो मेरे जैसे मैं ऐसी बात कहूंगा तो हमें पतन होगा। संग्रह करने में तो आजकल एक विशेषता से ही बात है कि बिना पाप के अधिक संग्रह कर सकता ही नहीं, बिना अन्याय कर सकेगा ही नहीं, और भोग भोगने वाला तो अन्यायी होता ही है, सुख भोग के लिए चेष्टा करता है उसको तो अन्याय प्रमाद स्वीकार करना पड़ेगा ही, ये तो पहले से ही ऐसी बात है। जहां न्यायुक्त धन कमाते थे, अन्याय करने के लिए बाध्य नहीं किए जाते थे, उस समय में ही भोगी को तो प्रमादी होना ही पड़ता था, जो वास्तव में शरीर और इंद्रियां हमारे नहीं है उनको अपनी मानने से ही भोग भोगा जाता है, तो बेईमानी तो आती है पहले। यही तन कर फल विषय न भाई, ये शरीर है, इस शरीर का फल ये भोग भोगना है ही नहीं, सुख भोगना हो तो स्वर्ग में चले जाओ, दुख भोगना हो तो नरकों में 84 लाख जोनी में चले जाओ, और सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठकर मुक्त होना हो तो मनुष्य में आ जाओ, देवी संपत्ति विमोक्ष आया, भोग भोगने के लिए थोड़ी देवी संपत्ति, वो तो मुक्ति पाने के लिए निबंध आया, श्रीमता निबंध के लिए बांधने के लिए आसुरी संपत्ति है। बांधने के दो फल बताया गाड़ी, एक बताया नरक और एक बताया आसुरी योनि, कीट पतंग पशु पक्षी आदि जोनी में चले जाना, अथवा नरकों के कुंडों में जाकर के वो तरह तरह की यातना भोगना। अगाड़ी 16वें का 16वां श्लोक आता है, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समाविता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके शुचौ अशुचो नरके पतंती, महान घोर यातना में नरकों में गिरते हैं। और बताया है क्षिपा मृजस मशुभान आश्री शिव योनिषु आश्री योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मने जन्मने माम प्राप्ति कौन दे तो यांति धवान गतिम। 19वां और 20वां दो श्लोक, उसमें आश्री योनि में उनका जन्म होता है और फिर उससे भी अधम गति नरकों में कुंडों में जाते हैं। ये यहां पर निबंध आया है, उसके दो भेद बताया अगर, और बार बार जन्म मरण है ये बंधन है ही, तो आशु संपत्ति बांधने के लिए और देवी संपत्ति विमोक्षाय मुक्ति के लिए। एक बात याद आ गई, आप ध्यान देकर सुने, मुक्ति क्या है? मुक्ति शब्द का अर्थ होता है छूटना, छूटना कौन चाहता है? जो बंध जाता है, फंस जाता है, पराधीन हो जाता है, वो छूटना चाहता है, तो छूटता है बंधन से, पराधीनता से। तो बंधन है वो स्वतः नहीं है, अपना किया हुआ है। इस वास्ते मुक्ति में सब स्वतंत्र है, कोई प्रतंत्र नहीं। बंधन में सब प्रतंत्र है, बंधन में रह नहीं सकता। बंधन तो नया नया करना पड़ेगा, नए जन्म लेना पड़ेगा, फिर दूसरा नया जन्म, फिर नया जन्म लेना पड़ेगा बंधन में रहने से। बंधन में रहना हाथ की बात नहीं है, ये तो आसक्ति के कारण से बंधन में पड़ा हुआ है। और छूटने में, मुक्ति पाने में तो जब चाहे तब पा सकता, जब चाहे तभी, जहां से चाहे, जैसी परिस्थिति चाहे, उसी परिस्थिति से उठकर मुक्ति पा सकता है। क्योंकि परमात्म तत्व के साथ हमारी एकता है, संसार के साथ हमारी भिन्नता है। तो सांसारिक पदार्थों का संग्रह और भोग करने तब ना आसुरी संपत्ति आती है। तो विजातीय का परित्याग करना, सजातीय की प्राप्ति करना विश्व स्वतंत्र है, कोई स्वतंत्र है ही नहीं। और बंधन को स्थिर कोई रख नहीं सकता। बचपन में थे तो बचपन में बंधे, फिर जवानी में बंधे, फिर वृद्धावस्था में बंधे, कभी रोग में बंधे, कभी निरोगता में बंधे, कभी मान में बंधे, कभी अभिमान में बंधे, कभी निंदा में बंधे, कभी स्तुति में बंधे, कभी अनुकूलता में बंधे, कभी प्रतिकूलता में बंधे। एक बंधन रह नहीं सकता, कभी रह ही नहीं सकता, कभी ताकत नहीं बंधन में रहने की। स्वयं के रहने की ताकत है और मुक्ति में होने की ताकत सदा है, बंधन में रहने की ताकत नहीं। जब चाहे मुक्त हो सकता है, क्योंकि जो हमारा स्वरूप है, हमारी जाति एकता है, उसके साथ एक होने में बाधा किस बात की? और जो हमारा नहीं है, उसके साथ में साथ नहीं रह सकते। नया नया बंधन करते रहते, नया नया। अरे भाई, संबंध जिसको कहते हैं, वो संबंध हरदम रहता है क्या? यहाँ संबंध और ही तरह का, यहाँ से दूसरे जन्म जाओ संबंध और ही तरह का हो जाएगा। माता ही पिता है, भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार सब, और नए नए मिलेंगे, नया नया बंधन मिलेगा, नया नया। अरे वो छूट जाएंगे फिर नया, वो छूट जाएंगे फिर नया, अवस्था छूट जाएगी फिर नया, परिस्थिति छूट जाएगी फिर नई, घटना छूट जाएगी फिर नई। बंधन में निरंतर रह नहीं सकता, नया नया बंधन करता ही रहता है, बंधता रहता। तो देवी संपत्ति जितनी है वो स्वतः खुली है। अब हम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग जितने देवी संपत्ति के गुण है, इनमें कोई पराधीन नहीं। थोड़ा सा विचार कर देखें कि जो सत्य भाषण है, असत्य भाषण है, एक एक गुण पर विचार कर रहे हैं, नमूना है, फिर सब समझ लेना आप। तो सत्य भाषण करने वाले को कुछ सीखना नहीं पड़ता है जिस बात के लिए, और असत्य भाषण करता है तो खूब निगरानी रखनी पड़ती है, ख्याल रखना पड़ता है। एक जगह है असत्य बोलता है तो उसी रक्षा के लिए कितनी जगह ख्याल रखना पड़ता है, और कहीं ना कहीं बोल निकल जाती, सच्चा बोल जाए पकड़ा जाता। ये सीआईडी विभाग है ना, पकड़ लेगा, कहीं ना कहीं ठीक निकला पकड़ लेगा। तो झूठ इसे निभ नहीं सकता, और सत्य में कोई बाधा आ ही नहीं सकती। सत्य बोलना बहुत सुगम, बड़ा सरल है। ऐसे कोई आदमी सत्यवादी है, उसको कह दिया जाए कि तुम झूठ बोलो, तुम्हारे को रुपया देंगे, ये देंगे, तो वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। और झूठ को शादी कोई परवाह नहीं, झूठ ही बोलता, उसको कहा जाए कि तुम सच्ची सच्ची गवा दे, 2 रुपया देंगे तुम्हारे, सच्ची बात कह देंगे, कह देंगे। झूठ कपट का कोई ख्याल नहीं रखता, वो तो सच्चा बोल जाएगा, लेकिन सच्चाई का महत्व जानने वाला 1000 रुपये देने पर झूठ नहीं बोलेगा, तो कठिन है वो। तीसरी बात, आज कोई विचार कर ले कि आज अभी से लेकर कल इस समय तक हम झूठ ही बोलेंगे, नियम कर ले, तो निभ नहीं सकेगा, तो फिर निभाएंगे कैसे? नहीं होता, भूख लगी हो कहते भूख लगी है ना, भूख नहीं, भूख नहीं हो तो हाँ, तो खाना पीना मुश्किल हो जाएगा, कहते खाना पीना मुश्किल हो जाए तो हम सह लेंगे सब, परंतु हमने तो झूठ बोलना ही है, तो तुम्हारी प्रतिक्रिया सच्ची होगी, अब क्या करोगे? अगर झूठ को निभा लिया तो प्रतिज्ञा सच्ची होगी, ये सच्चा आ गया, और वह टूट गई तो सच्चाई आ गई। सच्चाई आपको छोड़ नहीं सकते, आप छोड़ नहीं सकते, और कल इस समय तो सच्ची बोलेंगे झूठ नहीं बोलेंगे, कोई बाधा नहीं लगेगी आपको, सीधी आधी बात। काम तो आ जाए दूसरा लेंगे, फिर झूठ नहीं बोलेंगे। घाटा लग जाए चाहे नफा हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, झूठ नहीं बोलेंगे। तो सत्यभाषी है वो बोल सकता है, सत्यवर्णन कर सकता है, और उसके भीतर उत्साह बहुत रहता है, निर्धड़कता बनी रहती है, बड़ा निस्संग रहता है, निर्भय रहता है। अभयम जो बताया ना, वो अभयता स्वतः ही रहती स्वाभाविक ही। क्यों भाई, किसी का बिगाड़ किया? जो बात है जैसे कह दी, ठीक है बात, निर्भय रहता है। किसी पूर्व कर्म के कारण से कोई दंड मिल जाए तो दंड मिलने में भी उसकी प्रसन्नता होती है। देखो, स्वराज्य के लिए कई आदमी कैद गए और आज किसी की प्रशंसा की जाती है तो आई आई सा हा भैया बैठिए, ये चार बार कैद गए, चार बार तो कैद गए, उसकी प्रशंसा है। और डाका डाला है, किसी को मारपीट करके चोरी करके कैद गया है तो बेइज्जती हो जाती है। और कैद गए भैया हमें तो बेइज्जती हो, राम राम राम, कलंक लग गया उम्र में। तो कलंक कैद से नहीं लगता है, अन्याय से लगता है। और न्याय पर हमने स्वराज के लिए लिया तो क्या कलंक क्या है, मुझे प्रसन्नता होती, आनंद होता है। ऐसे सच्चाई के साथ चलने वाले को दुख आता है, कष्ट आता है, तो उसमें भी आनंद आता है। ऐसा दुख पड़ा कहाँ है बताइए? जो सच्चाई के लिए धर्म पालन करने के लिए हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी को कष्ट उठाना पड़ा तो उसकी आज प्रशंसा है, सत्यवादी हरिश्चंद्र। हर दुखों के लिए, पापों के लिए कष्ट अनेकों ने सहे, बहुतों ने सहे हैं कष्ट। बड़े बड़े राक्षस असुर हो गए हैं, वो आसुरी संपत्ति के कारण मारे गए बड़ी बुरी मौत से, उनका कोई महत्व नहीं है। और सच्चाई के साथ कष्ट भी आया है तो वो भी महाराज कलाक्षय श्लाघित रोही वृद्धि, वो कलाक्षय वृद्धि के लिए होता है। इस वास्ते वो बेइज्जती भी बड़ी भारी इज्जत करने वाली होती है। इस बार मीराबाई ने कहा, आप बदनामी लागे मीठी राणा जी मने, आप बदनामी लागे मीठी, आप बदनामी लागे मीठी। आ कौन सी, जो भगवान का भजन करते हैं बदनामी होती है। पाप करे, अन्याय करे, डका डाले, चोरी करे, हत्या करे, किसी का नुकसान करे और हमारी बदनामी हो तो वो बदनामी मीठी नहीं, वो तो अवगुण है। कहने तो भगवान का भजन लोगों में वो बदनामी, हरि मंदिर को नेम हमारे दुर्जन लोगों मैंने दी थी, राणा जी माने आबदनामी लागे नहीं थी। कैसी विलक्षण बात, थारे शहरों राणा लोक निमानो बात करे अणदी थी, राणा जी माने आबदनामी लागे नहीं थी। मीरा के प्रभु निवीर मेरा नागर अब चढ़ गए चोल मंजी थी, तो जो मंजी थी चढ़ गया उतरने का है, तो आप बदनामी लागे में थी, आप बदनामी बड़ी अच्छी, ये तिरस्कार भी बड़ा अच्छा, ये अपमान भी बड़ा अच्छा, इसमें यातना मिल जाए तो तपस्या होती है। धर्म के पालन करते हुए कष्ट मिलता है उसको ही तपस्या कहते हैं, बड़ी भारी तपस्या होती है, तप होता है, क्योंकि भीतर से शुद्ध होता है, निर्मल होता है, पाप नष्ट होते हैं, अनजान में किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते, निर्मलता आ जाती है। इस वास्ते शुद्ध अंतःकरण वाले के भीतर बहुत आनंद बहुत रहता है। अंतःकरण में कुटिलता होती है, संपत्ति रहते हुए, परिवार के रहते हुए, धन आदि के रहते हुए हृदय में जलन रहती है, और भीतर में कोई पाप नहीं है, बड़ी शांति, बड़ा आनंद होता है। कितनी विचित्र बात, अन्न नहीं मिले, वस्त्र पूरा नहीं मिले, निर्वाह की वस्तु नहीं मिले तो भी बड़ा आनंद रहता है। वो प्रसंग आता है, पांडव जब वन में रहते थे तो एक महाराज परीक्षा की है, धर्मराज ने कोई हरण हिरणी ले गया ब्राह्मण की। ब्राह्मण ने कहा, मेरा अग्निहोत्र बंद होता है, मैं क्या करूं, भोजन बड़ा मुश्किल है, ला दो। तो ये चले गए लाने के लिए, और फिर प्यास लगी, सरोवर किनारे गए तो चारों भाई मर गए, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, चारों ही मरे पड़े हैं। युधिष्ठिर गया, ये जब जल पीने लगा तो आवाज आई कि अगर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पी लोगे जो तुम मर जाओ, इस वास्ते हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। तो युधिष्ठ ने कहा हाँ बोलो भाई। तो एक सदा वो पक्षी के रूप में आकर बैठ गया वृक्ष पर। कहा वार्ता के मास्तरीय कह पंथा कृष्ण मोदो, बहुत से प्रश्न किए थे, उन प्रश्नों का उत्तर दिया। कदर जगत में कष्ट मोदते, एक आनंद कौन सा है, मोद का है। पंचमे सस्ते हनी साकम पतति निजगृह, कहते हैं पांच छह टंक का बाद में भी अगर घर में अपना साग पत्ती पकाकर खाता है, न तो कोई विदेश में जाना पड़ता है, न उसी ऊपर कौड़ी का ही देना है, वो मोद है, आनंद है उसका। और जो बचना पड़ता है जगह जगह ऋण जिस पर रहता है, उसको मोद का है। तो प्रसन्नता मस्ती किस बात में है कि किसी में झूठ कपट नहीं, किसी की ठगी नहीं, किसी को धोखेबाजी नहीं, बड़ा अन्न कम मिले तो परवाह नहीं, और बढ़िया बढ़िया भोग पदार्थ मिले पर पाप से मिले तो हृदय जलता रहता, तो उसे हर्ष नहीं होता। पंचम दिन अथवा छठे साक पतत निजगे, बिन प्रवास कर्ज बिन मोद जगत नरते, वो मोद है, हर्ष है, मुझे हर्ष मस्ती रहती उसमें। तो अन्याय हम कुछ नहीं करते हैं, न्याय युक्त रहते हैं, तो हृदय में बड़ा आनंद रहता है। उस दिन सुनाया था ना, पांडव सेना के बाजे बजे, कौरव सेना के बाजे बजे, तो कौरव सेना के ग्यारह अक्षरों की सेना बजे, सेना के बाजे बजे, तो सशब्द तुमलो भवत, बड़ा भयंकर शब्द हुआ, पर पांडवों पर असर नहीं। और वो पांडवों की सेना का हुआ तो सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदार्यत, नभस्त पृथ्वी तेवा तुमलो व्यनुनादेन। पांडव सेना जो सात अक्षोणी थे उनके बाजे बजे, बजते ही कहते हैं कि वो धृतराष्ट्र संबंधियों के हृदय को विदीर्ण कर दिया हो, ऐसी चीज पीड़ा पैदा हो गई। अब ग्यारह अक्षोणी सेना दहल गई सातों की सेना से, और सातों अक्षोणी सेना के ऊपर असर नहीं पड़ा। क्या ये धर्म में थे, ये पाप के पक्ष में नहीं थे, न्याय के पक्ष में थे। तो न्यायी आदमी का हृदय बड़ा शांत रहता है, बड़ी प्रसन्नता रहती है, बड़ी मौज रहती है, सदा ही आनंद रहता है उसमें। और अन्याय करता है तो अन्याय का चित्त खोखला हो जाता है। रावण वशवर्ती नर नारी सब उसके वशीभूत होते थे। मैं सीता जी को लेने के लिए गया है जब चोरी करने को, तो इत उत स्वान की ना, कुत्ते की तरह इधर उधर देखता है और डरता है कोई देख ना ले। अन्याय की तरफ चलने से हृदय में धड़कन पैदा हो जाती है, बल नष्ट हो जाता है। सात्विक वृत्ति है, सदैव अच्छे आचरण है, वो निर्भय रहता है, निस्संग रहता है। क्यों भाई, किस बात किस हमने कसूर किया ही नहीं, डर किस बात का है। और खराब रास्ते चलता है, उसके हृदय में शांति नहीं रहती। बाहर से धन हो जाए भले ही, संपत्ति वैभव हो जाए, बड़े बड़े मकान हो जाए, बड़ी भोग सामग्री हो जाए, पर हृदय जलेगा। और बाहर की सामग्री चाहे कुछ भी ना हो, पर हृदय शुद्ध है, निर्मल है, तो बड़ी शांति रहे। तो देवी संपत्ति विमोक्ष आया, फिर मुक्ति क्या करे, अभी अभी वर्तमान में मुक्ति देवी संपत्ति। अरे मुक्ति क्या, बंधन है ही नहीं, बंधन तो दुर्गुण दुराचारों का ही है। न्याय विरुद्ध चलना यही बंधन है महान। अपनी चीज नहीं, अपनी मान ली, बंध गए। ये शरीर भी यहां मिला है, परिवार भी यहां मिला है, मकान जमीन रुपये यहां मिले हैं, उनको अपना मान लिया, कब्जा कर लिया, अब दुख होगा। और मिले हुए हैं, मौज में रहे, आनंद में रहे, तो दुख होता ही नहीं। एक कहानी याद आ गई, एक कोई संत थे विरक्त, मौज की मस्ती में चलते थे, चलते चलते एक शहर के पास पहुंचे तो दरवाजा बंद हो गया, रात्रि हो गई ज्यादा, शहरों के दरवाजे चार दीवारी दरवाजे थे, बंद हो गया तो बाहर ठहर गए। तो राजा उनका शांत हो गया था, तो उन लोगों ने विचार किया भी राजगद्दी पर किसको बैठावे। तो बड़ा वाद विवाद चला, राजा का लड़का था नहीं। अंत में निर्णय किया कि भाई आज सुबह प्रातः काल ही दरवाजे से जो पहले आ जाए उसको राजा बना दो। सबने ऐसा विचार कर लिया और दरवाजा खुलते ही बाबा जी भीतर गए पहले ही पहले। महाराज श्रृंगार की हथनी खड़ी थी, उसने जो ऊपर चढ़ा दिया, बाबा जी ने कहे ये क्या तमाशा है, महाराज अब तमाशा क्या है, आपको राजगद्दी मिलेगी। संत मुस्कुरा रहे हैं, भाई अच्छी बात क्या मिलता है। पंजाब कहा कि महाराज हमारा निर्णय हो गया है कि आज जो पहले आएगा उसको राजगद्दी दी जाएगी, आप पहले आए सबसे, इस वास्ते आपको राजा बनना पड़ेगा। अच्छा भैया, राजा बना दिया। बाबा जी ने अपनी पोशाक है वो धुला करके साफ रख दी और कहे बक्सा लाओ, बक्सा बंद करके चाबी अपने पास ले ली, तुम भी कमंडलू चद्दर वृक्ष में रख दिया और राज सिंहासन पर बैठ गए राजी के पोशाक पहन करके। अब जो कोई पूछे तो बड़े न्याय से इंसाफ करे ठीक तरह से। प्रजा में बड़ी चैन की बंसी बजने लगी, मौज होने लगी, तो न्याय से सबको सुख होता है, अन्याय से दुख होता है, तो संत कह रहे वो अन्याय क्यों करते। ऐसे न्यायुक्त राज्य चलने लगा तो बहुत सी प्रजा जो पास पड़ोस में राजाओं के यहां रहती थी वो प्रजा आकर बसने लगी वहां, यहां बड़ा आराम। तो महाराज जी ना तो भोग भोगना न संग्रह करना, अपने तो सबको सुख कैसे पहुंचे। ते प्राप्तवंति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र में हित में जिनकी प्रीति है। ऐसे करते प्रजा बहुत बढ़ी और महाराज कर आपसे आप आने लगा, खजाने बढ़ गए। ये जो वहम है कर अधिक लगा दो अधिक आए, रुपया अधिक नहीं या तंगी ज्यादा आवेगी, दुखी ज्यादा होंगे। जल यहां से डाला जाए घड़ा भर तो दूर पहुंचते पहुंचते बहुत कम पहुंचेगा वहां। ऐसे कर यहां लिया यहां से उसने लिया तो उसने वहां लिया, ठेर तक तो बहुत कम पहुंचेगा, बीच बीच में खत्म हो जाएगा। वो बहम रहता है अधिक होने से हमारे पास अधिक पहुंच जाएगा, कैसे अधिक पहुंच जाएगा। तो ऐसे खजाना भी बढ़ गया और बड़ी सुख चैन बंसी बजने लगी। तो पड़ोसी राजा ने विचार किया कि भाई राज्य तो इसका बढ़ रहा है, बाबा जी सब और तो जानते मैं लड़ना तो जानते नहीं, अपने लड़ाई करो इस विजय करने के लिए। तो पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी, महाराज से कहा कि महाराज राजा ने चढ़ाई करी है, फौज आ गई, कि तो चुप रहो बोलो मत हल्ला मत करो। कह महाराज वो आ रहा है विजय करते हुए, अब वो कहते ना हल्ला नहीं करना। लोगों ने देखा कि ये को राजा होते हैं और ऐसे को राज्य रहेगा। ज्यादा नजीक आ गए तो अपने विश्वास पात्र आदमी को भेजा के राजा से पूछोगा आपने चढ़ाई क्यों करी। कहते महाराज हमने तो राज्य लेने की नहीं करी, तो कि मेरे से मिलो, बुला लिया, बुलाकर कहा कि आप राज्य करना चाहते हैं। हाँ, तुम लड़ाई क्यों करते हो, आपके आदमी मरेंगे हमारे आदमी मरेंगे क्या फायदा, हमारे तो यहां कोई था नहीं राज्य करने वाला, इस वक्त हम तो बैठ गए, अब आप लाओ भाई हमारा बक्सा लाओ। बक्सा मंगा लिया अपना, चार भी लेकर चट अपने प्राय कर ले लिया, कमंडल उछल दी। आज तुम राज के इतना दिन फूल गए हम खाए, अब तुम खाओ मौज करो। तो अपने कोई लेना थोड़ा ही है, अपने तो काम करना है भाई। अब उसको क्या दुख होगा साहब, उसे दुख होगा कि राज चला गया, अरे चला गया क्या आ गया, न आया है न गया है, बाबा जी ऐसे नहीं देते मौज से। सिद्धि सिद्धियों समव होता समतम योग उचित है, सिद्धि असिद्धि में सम रहना इस समता का नाम योग है। गीता का ये योग है, वो प्राणायाम आदि नहीं है, गीता का योग यही है। तो हरदम है संपत्ति संपत्त विपत्त से महताम एक रूप था, श्रेष्ठ पुरुषों से बस वही एक रूप रहता है सदा ही। संपत्ति आवे तो ही मौज है, विपत्ति आवे तो ही मौज है, तो उनके दुख किस बात का है। अरे भाई भीतर में कुछ गड़बड़ी होती है तबने जलन होती है पैदा, मन जहां साफ है तो कि मन चंगा तो कठोती गंगा मौज ही। तो देवी संपत्ति विमोक्ष आया निबंध आया सुरीमता, तो वो दम्भो दर्पो अभिमान से दम्भो दर्पो, दर्प घमंड होता है हम ऐसे हम ऐसे, अरे हमारे से कोई और तेज मिल जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी, नहीं तो अभी क्या तुम करो भाई, हम व्याख्यान देंगे बढ़िया आदत बढ़िया दो अपने घटिया सही सही बद क्या है, काम बढ़िया करते हो तुम राजी करो वही करो काम करने वाले यही अच्छा। तो बड़ी मौज रहती देवी संपत्ति में बड़ा आनंद रहता है, स्वतः स्वाभाविक कोरा आनंद है मुफ्त में आनंद, और आसुरी संपत्ति में दुख होता है बड़ी मेहनत से,
झूठ कपट बेईमानी आदि करे दम्भो दर्पो अभिमान क्रोध है पारुष्य में वजह ये अवगुण कोई मामूली है क्या धारण करना पड़ता है दम्भ धारण करना पड़ता दर्प घमंड हम इतने धनवान है हम इतने विद्वान है हम इतने त्यागी है इतने तपस्वी है हम ऐसे बड़े आदमी है ऐसे घमंड होता है चीजों को लेकर के तो घमंड तो एक फोड़ा ही तो है कोई ठेस लग जाए तो रोएगा चिल्लाएगा भाई थोड़ा है ना ठेस लग सह नहीं सकेगा अभिमान जिसके भीतर है अरे अभिमान है ही नहीं अब तो मौज ही मौज हो रही है पूरी इस बात का संतों से कहा कि अड़ते से तल नहीं सरे हो जलते से जल हो कबीर ऐसे संत को हो गंजन सके कोई कोई अड़ने के आरोप उसमें टल जाए अच्छा भाई तुम आज हो और जल आग बुबुला होता है जलते से जल हो पानी हो जाए काम तो उसको कौन हरा दे कैसे हरा दे मुझे जिस विजय की मनवे ही नहीं और पराजित होने में जो विजय वो विजय होने में विजय है ही नहीं मस्ती में विजय अपने आनंद पानी बरसता है पहाड़ों में खूब जल तलता है तो बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं नदी के किनारे रहने वाले बड़े बड़े वृक्ष वो धूप लगी रहती है बेत होती है प्रवाह आया तो वो पसर जाती है जल ऊपर का निकलेगा चला गया फिर खड़ी हो जाती उसको नदी उखाड़ती नहीं वो पहले दंडवत कर लेते उखाड़ी क्यों उखाड़े अकड़ रहे थे उसको उखाड़ दे बड़ी मौज की बात है रज रज ऊंची चढ़े नरमाई के था रोड़ा ठोकर खाते कर रही के था पत्थरों के ठोकर लगे जगह जगह रज्जी महीन होते उड़ जाती महाराज ऊपर सबके सिर पर बैठ जाते इतनी नम्रता होती है सरलता होती है सीधापन होता है बड़ा अच्छा होता है कई आदमियों की ऐसी गति हुई है कि ऐसी सीधा परीक्षा हमारा काम नहीं चलेगा वे इसका अध्ययन नहीं करते इन बातों का अध्ययन नहीं है उल्टी जटी हुई बात है बात ये है बड़ी सच्ची दैवी संपत्ति दैवी संपत्ति व्यवहार में भी बड़ा लाभ होता है इसका हर एक आदमी को हम समझा दें ये तो ताकत से बाहर की बात है परंतु इन बातों पर विचार हुआ हुआ है मैंने पुस्तकें पढ़ी है देखा है विजय भी जोर करके उसको हरा करके विजय करना वो विजय नहीं है ऊपर से विजय होगी मन पर विजय नहीं होगी और देवी संपत्ति के गुणों के द्वारा विजय होगी भीतर से पराजित हो जाएगी दुनिया संत महात्माओं के बिना लड़ाई किए दास हो जाते हैं दंड वाले जो हमारे दास वो दंड रहेगा हाथ में तभी तक दंड जाते ही नहीं उसके दास नहीं होंगे हृदय दास कैसे हो जाएगा विजय उसकी होती ही नहीं ऊपर से दिखती है विजय तो दम्भो दर्पो अभिमान अभिमान होता है बड़ा अपने मन में हम बड़े हैं तो उसको नीचा देखना पड़ता है भगवान ने कह दिया अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वा च नारद जी महाराज कहते हैं कि भगवान के यहां अभिमान का द्वेष है अभिमान द्वेषित्वा और दैन्य प्रियत्वा च और दीनता भगवान को बड़ी प्यारी लगती है अभिमान अच्छा नहीं लगता किसी का अभिमान नहीं रहने देते भगवान क्योंकि अभिमान है वो उसका अहित करने वाला है संसति मूल सूल प्रदनाना अरे सकल शोकदायक अभिमाना अभिमान तो सब तरह का शोक चिंता देने वाला है इस बात संसति मूल जन्म मन का मूल है अरे नाना सूल पर तरह तरह की सूल देने वाला है अभिमान ताते करें कृपा निधि दूरी भगवान उस कृपा करके अभिमान को दूर कर देते हैं पर अभिमान दूर करते हुए लगता बड़ा बुरा है अभिमान प्यारा लगता है उसी बात है कुपत अच्छा लगता है अभिमान अपने में अच्छा लगता है परंतु अभिमान है दूर दोष करने वाला मान पतन करने वाला अहंकार राक्षस महा दुखदायी सब भात सो जो छूटे इस दुष्ट से सो ही पावे शांति इस अभिमान से छूटता है वही शांति पाता है मस्ती रहती है आनंद रहता हरदम मस्त रहता सर्व वस्तु भयान्वितम भूमिणाम वैराग्य मेवा भयम अभय है शांति रहती दम्भो दर्पो अभिमानस क्रोध क्रोध तुम्हारा जलाता ही है नमोस्तु कोपदेवाय कोपदेव को नमस्कार किया है कि स्वास्थ्य ज्वालिनी विषम हो, जहां पैदा उसको जलाओ पहले। ऐसा देवता है कोई जहां पैदा उसका नाश करे पहले? और धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्रसवी है परिबंधन अपकारिणी कोप स्थित कोपे कोपा कथन न थे। अगर अपकार करता तुम्हारा नुकसान करता है उस पर तुम्हें क्रोध आता है तो कोपा है कोपे कोपा कथन न थे, क्रोध पर क्रोध क्यों नहीं आता, इसको दूर क्यों नहीं करता? धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का नाश करने वाला क्रोध, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नाराणाम देहस्तो देह विनाश नाय यथास्थित काष्ठ गतो ही वनिष्ठ एव वनिर दहते शरीरम। काठी होती है उसके लगी हुई अग्नि कुछ खुद को जला दे, ऐसे ये जलाने वाला है। तो क्रोध क्यों आता है? मन में कामना होती है, कामात क्रोध हो भी जाते, चाहना होती है, अभिमान होता है, तब क्रोध आता है। अभिमान रूपी फोड़ा भीतर में है, उसे ठेस लगते ही पीप निकलती। अरे मेरे को कह दे तुमने ऐसा, क्रोध आ जाएगा। अनित क्रोध किस बात का, क्या कहते अच्छी बात? तो अभिमान नहीं, स्वार्थ नहीं, कामना नहीं, उसको क्रोध नहीं आता। क्रोध आता तो भीतर है, ये दोष है। भीतर बीज के बिना वृक्ष ऐसे पैदा हो, अंकुर हो गए पैदा कैसे? तो क्रोध है ये बड़ा जलाने वाला है। इस वास्ते क्रोध न करें। तो कैसे न करें? अभिमान न रखें। अभिमान और स्वार्थ दो खास बात है क्रोध की जड़। अवगुणों को दूर करना कोई चाहता है तो अवगुणों के कारण को दूर कर दे। कारणाभाव कार्याभाव स्वतः हो जाएगा, कारण ही नहीं है तो कार्य कैसे होगा? तो स्वार्थ बुद्धि, और वो भी अनुचित बुद्धि होगी ना स्वार्थ, तब क्रोध ज्यादा आता। ऐसे अभिमान है, अनुचित अभिमान होता है, उसको क्रोध बहुत ज्यादा आता है। और उचित भी अभिमान तो नहीं चाहिए, परंतु उसको क्रोध ज्यादा नहीं आएगा। जितना अन्याय ज्यादा होता है उतने ही अवगुण ज्यादा आते हैं। और पारुष्य में उच्च कठोरता होती है, व्यवहार में कठोरता, वचन में कठोरता, शब्द कड़ापन रहता है। तो अभिमान है ना अपने में तो क्रोध आता है, कठोर वचन होते हैं, बर्ताव व्यवहार कठोर होता है। नीति में तो लिखता है हास्य न तद वदती यद कलहे प्यवाच्यम। कलह में नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कड़वा बोल देता है हंसी में, दूसरे को सिर्फ दुखे जैसी बात बोल देता। प्रियवाक्य प्रदान है ना सर्वे तुष्यंत जनता तस्मात प्रिय में वक्तव्य वचने का आदर करता। इसमें कौन से पैसे खर्च होते हैं भाई? जंतु जीव है ये भी प्यारे वचन बोलने से राजी हो जाते हैं। कुत्ते कोई प्यार करे बोले तो वो राजी हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा अभिमुख, और तिरस्कार नाराज हो जाएगा। इस बात से अच्छा बर्ताव करो, मीठा बोलो, नव चलन पर ओगन ढगलन पांचों चंगा नानगा हरिभजा हाथा दे रहे। पांच चीजें बड़ी चंगी है, मीठा बोलन और नव चलन, नम्र होकर के चले सबके साथ। तो मीठा बोलन नव चलन पर अवगुण ढगलन, किसी का अवगुण हो तो उस अवगुण को ढक दिया। चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत। पर्दे पर्दे अंतर है, कई हीरा कई पत्थर है, तो पर्दे में है सब कुछ। इस बात से खुलासा मत करो। तो बड़ी सरलता से अपना किसी का भी पर अवगुण ढक लेना। हरि भज हाथों में भगवान के भजन का तो अभ्यास हो, और हाथों दे जो कुछ हो उसके दूसरा हित करे, तन से मन से वचन से धन से विद्या बुद्धि अधिकार आदि से दूसरों का हित हो जाए। क्योंकि हम औरों से क्या चाहते हैं? हित तो चाहते हैं। हमारे से अधिक बलवान है, उस बलवान से हम क्या चाहते हैं? हमारी रक्षा करे, हित करे, हमारी सहायता करे। तो जिससे आप बलवान हो आप भी यही करो, क्योंकि जब यही बात ठीक है, आप हित चाहते हो बड़ों से, तो जहां आप बड़े हो वहां हित करो। औरों का तो अहित करे, दुष्ट दुख देना चाहे, कि बड़े आदमी हमारे पर कृपा रखे, अन्याय है। तो जो कृपा रखता है उसका कृपा चाहना वाजबी है, और उस पर कृपा होती है भगवान की, संतों की, महात्माओं की, दुनिया की। जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। पर राम जी कृपा कब होती है? कि जब वो सबके साथ सुरदा का प्रेमता का बर्ताव करता है। सूर्यदास सर्वदेही नाम, संत महात्मा होते हैं वो सूर्यदास सर्वदेही नाम, संपूर्ण देहधारियों को शुद्ध होते हैं। भगवान भी सूर्यम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृत्यति, प्राणी मात्र के परम शुद्ध भगवान, और वो सबका शुद्ध हो जाता तो भगवान के साथ सजातीयता हो जाती, भगवत प्राप्ति मिल जाए, भूल जाती महाराज, बिना चाहे वो न चाहे तो हो जाए। क्या मृगा मृग संग मनुप्रजंती गावस्त गोभी सुरगा सुरंगी मूर्खा समूर्खी सुधिया सुदेवी समान शील सक्यम। तो भगवान की जैसी दया है, भगवान जैसे सब पर कृपा रखते हैं, ऐसे भगवान के प्यारे भक्त होते हैं वे भी सब पर कृपा रखते हैं, इसी से द्वेष नहीं करते, बैर नहीं करते, सबके सुरद होते हैं, सबके हितेशी होते हैं। ऐसा नीति एक पद आता है, इक्षु दंड होता है, ऊख ईख जिसको कहते हैं, उसको कोलों में डाल करके पेड़ आ जाए तो मधुरम उद्भवति, मीठे मीठे निकलता मीठे, यदि तंग करने वाला इसे कड़वा दे दे निकलेगा है ही नहीं, मीठा ही मीठा है। ऐसे अच्छे पुरुष को तंग करे तो मीठा ही निकलता है, तो वो हित ही करता है, उसका अहित किसी करता ही नहीं, विचार ही नहीं है किसी का अहित कर दे। संपूर्ण के सुरद होते हैं, प्रेमी होते हैं, कहीं कड़ा भी बर्ताव करते हैं तो कड़ा बर्ताव भी हित के लिए ही, जैसे माता पिता बच्चे को पढ़ाते समय शासन करते हैं तो वो भी उस बच्चे के हित के लिए होता है, उसके परम हित के लिए होता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने अभिमान के लिए नहीं, दूसरे को दुख देने के लिए नहीं, कष्ट देने के लिए नहीं, तो बर्ताव बड़ा प्रेम का, बड़ा आदर का, सत्कार का, स्नेह का बर्ताव करते हैं, संपूर्ण प्राणियों के हित में उनकी प्रीति होती, तो देवी संपत्ति होती है, क्रोध और पारुषिवा नहीं होता, नम्रता होती है, सरल होती है, मिठास होता है बर्ताव में, भीतर मन में भी सरलता होती है। तामसी धर्म को अधर्म मानता है, अधर्म को धर्म मानता है, शास्त्रीय मर्यादा का उश्रृंखल करना नष्ट कर देना ही ठीक मानते हैं, और मर्यादा का विरहना गरीब मानते हैं, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, कर्तव्य को अकर्तव्य, अकर्तव्य को कर्तव्य, उल्टा चलना, ऊंधा शास्त्र से विचित्र विरुद्ध चलना, आजकल के विद्यार्थियों में कयों में यह बात देखने में आती है, जो उल्टा आचरण करते नहीं करना चाहिए वैसा करते। मैं तो ऐसा भी कह दिया था एक बार दो बार क्या हुआ सर, कहा भाई आज अब क्या है कि दुष्कर्म खराब कर्म क्या है कि विद्यार्थियों को देखे वो करे वही दुष्कर्म है, जो करेंगे वही करेंगे बिना शिक्षा के। कलकत्ते में घूमने गए तो खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा था पीपल पेड़ में, तो पीपल के पेड़ में पेशाब करता है तो विचार आया भी ये क्या आज दुष्कर्म क्या होते हैं इनको पूछ लो। स्वतः विपरीत बुद्धि होने से आचरण विपरीत होते, ऊंधी बात अच्छी लगती। एक लड़की से बात सुनी कि गाय का घी आ तो गंध आती है इसमें, भैंस का घी अच्छा, गाय के घी में गंध आती है। मेरे समझ में आई कि बात कोई है तो विचित्र, शास्त्र से विपरीत बात इनकी पैदा होती है, सुते ही स्वाभाविक। अधर्म धर्म इति मन्यते तम सागर का, बड़ा धर्म का वर्णाश्रम का नाश हो जाए, इसका धर्म का धर्म में मर्यादा नष्ट हो जाए। कलयुग का वर्णन आते ही आया है रामायण में, जहां शुरू होता है ना उत्तरकांड में, तो वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोध रथ सब नर नारी, ये आता पहली चौपाई। वर्ण धर्म नहीं मानेंगे, आश्रम को नहीं मानेंगे, शास्त्र विरुद्ध काम करने में ही उनकी रुचि हो जाएगी। आज लोग कहते हैं हम धर्म को नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे शास्त्रों को नहीं मानेंगे, ऋषि मुनियों को नहीं मानेंगे, ऐसा उनकी निंदा करते हैं, खंडन करते हैं। मैं तो कहा करता हूं कि ये ऐसा करते हैं इससे राजी होना चाहिए, और राजी नहीं उनको दंडवत करनी चाहिए। जो शास्त्रों का खंडन करे, वर्ण धर्म का खंडन करे, शास्त्र की मर्यादा का खंडन करे, उनको नमस्कार करें, कहते क्यों हमारे शास्त्रों पर पहले श्रद्धा कम थी, तो शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग आने पर ऐसे ऐसे आदि पैदा हो जाएंगे, और वैसे आप लोग पैदा हो गए। हमारे शास्त्रों की बात यह सच्ची, आपने तो निहाल ही कर दिया। हमारी दिखती हुई श्रद्धा को आपने जमा दिया पीछे, क्यों कलयुग में ऐसी बात आई है। ऐसी बात अगर तुम्हारे आचरण में हम नहीं देखते तो हमारे संदेह हो जाता है बात क्या है। कलयुग में तो ऐसा ऐसा होगा लिखा है, पुस्तकों में हुआ है ही नहीं, तो संदेह होता। अब हमारे शास्त्रों की एक बात सच्ची, कहते कैसे हमारे शास्त्रों में प्रमाण आप है ना, चलते फिरते हमारे शास्त्रों के पक्के प्रमाण आप हैं। लिखा है कलयुग में ऐसा होगा और कलयुग आया और ऐसे हो गए। इस वास्ते आप तो बड़े अच्छे हैं, तो हमारी श्रद्धा को दृढ़ कर रहे हैं, शास्त्रों की बात सच्ची कर रहे हैं। तो कहते मेरे शास्त्रों में ऐसा ही चलना चाहिए। अभी ऐसा जमाना है, इस जमाने में फिर ऐसे ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों ने लिखा है ना कलयुग होने पर ऐसा होगा। ऐसी बात हमारे काम पड़ गया था, हिंदू कोर्ट बिल का जब विरोध करने चले थे, बड़ी सभा की थी बाजार में, उस सभा में एक पंडित करके खड़े होकर बोले कि स्वामी जी आप गलती कर रहे हैं, अपने शास्त्रों में क्या लिखा है कि कलयुग आने पर ये आपकी मर्यादा नहीं चलेगी, मर्यादा विरुद्ध कार्य होगा, तो विरुद्ध कार्य हो रहा है इसका आप जो खंडन कर रहे हो ये गलती कर रहे हो, और जो ये कर रहे हैं खंडन करके जो विरुद्ध कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं। क्यों कलयुग अनुसार है, समय जैसा हो उसके अनुसार चलना है तो न्याय है, और समय और ही आप और ही चलो तो अन्याय है। इस वास्ते अभी जो आप उसका खंडन करें कोई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने वर्ण धर्म में अपने वहीं होना चाहिए, ब्याह शादी होना चाहिए, वही गोद आना चाहिए आदि आदि आप कहते हो, ये तो गलती है, ये तो पुराने जमाने की बात, कलयुग में थोड़ा ही रहेगा, कलयुग में निषेध किया है इन बातों का। इस वास्ते जो निषेध करते हैं उल्टे चलते हैं, ठीक करते हैं, शास्त्र के अनुसार चलते हैं। कहा भाई शास्त्र के अनुसार चलते हैं, बताओ कलयुग होगा नहीं ऐसा, होता होगा कि नहीं, लिखा है कि नहीं लिखा है, कि लिखा तो है तो फिर ये ठीक कर रहे। तो क्या कलयुग में ऐसा होगा ये किस लिए लिखा है, ये वैसा बनने के लिए लिखा है कि बसने के लिए लिखा है। बद्रीनारायण वर्षा हो जाए ज्यादा पहाड़ों में और तार आ जाए कि दो दिन में ही वहां बाढ़ आने वाला है, गंगा जी में पानी बहुत बरसा है, तार आ जाए तो गांव पास में रहने वाले हैं, गंगा जी के पास में रहने वाले गांव खेड़ा बस्ती, उनको चाहिए कि वे सब ने भी गाय भैंस लिया हुए गंगा जी के प्रवाह में, सब बस्ती यहां कर ला कर रखे, क्यों तार आ गया है कि बहेगी सब गंगा जी जोर से आवेगी तो वहां चलो ऐसा करेंगे लोग। अरे तार आया है तो बहने के लिए आया है कि बसने के लिए, ऐसे ऋषि मुनियों ने कलयुग में ऐसा होगा लिखा है तो उसे बचने के लिए लिखा है अथवा बहने के लिए लिखा है। तार पहले समाचार दे दिया कि सावधान है ना, तुम सावधान ऐसे होता है। कहते हम समय के अनुसार चलते हैं, कलयुग में ऐसा हो कलयुग अनुसार ही करते हैं हम, समय के अनुसार चलो तो चल जाओगे भैया, जीना मुश्किल हो गए समझे। ठंडी आ जाए तब गर्म कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ठंडी में रहना चाहिए।
आप जाओ
कितने नंबर गाड़ी है, गाड़ी नंबर MRA 8789 बीच में खड़ा उसको हटा दें भाई, जिसकी गाड़ी हो, गाड़ी नंबर MRA 8789। जाओ भाई रास्ता मत रोको, ठीक बात है। हाँ क्या चल रही थी बात, हाँ समय के अनुसार चलें तो ठंडी आ जाए तो फिर गर्म चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, समय ठंडी का है चीज गर्म सेवन करो समय विरुद्ध है, तो ठंडा जल पीना चाहिए, बाहर रहना चाहिए, कपड़े का उपयोग करना ही नहीं चाहिए, अग्नि संगठित लगानी नहीं चाहिए, बिल्कुल गर्म है ना। और गर्मी के दिन आवे तो ठंडा जल भी नहीं पीना चाहिए, छाया में नहीं बैठना चाहिए। समय का अनुकूल चलो, अरे चलो तो चल जाओगे भाई, बीमार तो हो ही जाओगे, मुश्किल हो जाएगी ना। तो समय से रक्षा करो, ये शास्त्र का सिद्धांत है कि रक्षा करे। जो समय पर गड़बड़ी आती है तो उसे रक्षा करो। तो रक्षा करना मनुष्यता है। पशु पक्षी भी महाराज समय आता है तो उस समय से रक्षा करते हैं, शीत है, घाम है, जादी होता है तो वे भी अपनी रक्षा करते हैं। तो जैसे शीत घाम आदि शरीर के विरुद्ध आने से शरीर रक्षा करते हैं, ऐसे ही ये शास्त्र निषिद्ध एक समय आ गया पतन का, उस समय रक्षा नहीं करोगे तो आपका धार्मिक जीवन, मनुष्य जीवन, आपका आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। जब शरीर के विरुद्ध काम करने से, शरीर के विरुद्ध समय आने से रक्षा न करने से मर जाना होगा, ऐसे आध्यात्मिक जीवन आपका मर जाएगा, वो मुर्दा हो जाएगा। इस वास्ते उस समय में समय की रक्षा करो। तो कलयुग आया है भाई, इस वास्ते कलयुग का भी बोलबाला है, तो उनसे अपनी रक्षा करो। तो निबंध आया श्री मता है ना, दम्भोदर्पो विमानस्य क्रोध पारुषिवेव अज्ञानम चा विजाते पार संपन्न माधुरी। अज्ञान को लेकर पैदा हुए उनकी आशु संपत्ति होती है, ये असुरों के गुण उनमें आ जाते हैं, ऐसे लक्षण अपने में आ जाते हैं। इस बात से भाइयों बहनों को सबको तैयार रहना चाहिए। मूल मंत्र इसका है कि स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके हित बुद्धि को धारण करो और भगवान को याद रखो, ये देवी संपत्ति का मूल है। भगवान के हरदम याद, जहां प्रभु की याद होती है वह अंतकरण में प्रकाश होता है, प्रकाश होता है वह अंधेरा नहीं आता, और अंधेरा जहां नहीं आता है वहां पर भय मिट जाता है। अंधेरा होने पर घर के मकान में भय लगता है, धीरे धीरे चलते हैं कि ठोकर न लग जाए, सिर में न लग जाए, तो क्या थम्भे नजीक आ गए अंधेरे में, वो तो है वहीं है परंतु भय लगता है। और प्रकाश होता है तो महाराज जंगल में दौड़ करके निकल जाएगी, वो दिखता है सब प्रकार निकल जाए, भय नहीं लगता। तो भगवान की याद न करने से अंतकरण होता है मैला, अंधेरा होता है उसमें। भगवत भजन करने वालों के लिए तेसाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमानाश्याम न्यादो भागवत को ज्ञान दीपेन भागवता। प्रेम पूर्वक भजन करते हैं उनके अंतकरण में रहने वाला मैं ज्ञान रूपी दीपक से देवी दीप्यमान भास्वता ज्ञान दीपेन अज्ञान जम तमा नाशयान, अज्ञान जम अंधकार का नाश कर देता। तो प्रभु के याद करने से चित्त में प्रकाश हो जाता है। सज्जनों उनको वो सीखना नहीं पड़ता, शास्त्रों की, वेदों की, पुराणों की, ऋषि मुनियों की जो बातें हैं वे बातें स्वतः हृदय में पैदा होने लगती। स्वाभल जो अंतगण शुद्ध हुआ, निर्मल हुआ, कंचन खान खुली घट माही रामदास के तो नहीं, हृदय में खानी खुल जाती है। अनजान पने में भी उनकी बात ऐसी निकलती है जो वास्तव में मर्यादा होती है, शास्त्रों की होती है, ठीक सिद्धांत की होती है, अंतगण ही ऐसा हो जाता है। इस बात से देवी संपत्ति का पालन करने में दो बात मुख्य है, भगवान को याद रखना और अपने शरीर मन वाणी आदि के द्वारा दूसरों का हित करना, अहित नहीं करना, किसी का भी नुकसान नहीं करना। हित है उतना करो, जितनी शक्ति हो उसके अनुसार करो, अहित किसी का भी क्यों करो, किसी का भी कभी अहित न हो। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिति रताः, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। क्यों, परमात्मा सबके सुर्ग है, सुर्ग वो बन जाते हैं। तो वे हेतु रहित जगत को उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, भगवान और भगवान के भक्त ये सदा हित करने वाले होते हैं। तो देवी संपत्ति वहां स्वतः रहती है, स्वाभाविक आती है। सिमटि सिमटि जल भरही तलावा, जिमिषद गुण सज्जन पही आवा। वर्षा बरसती है तो जल सिमट सिमट करके तालाब में भर जाता है। ऐसे जहां भगवान का भजन है, उपकार है, सेवा है, ऐसा भाव होता है तो जितने सदगुण सदाचार स्वतः स्वतः आ जाते हैं स्वाभाविक, और खुद को संतों को पता ही नहीं लगता जितने गुण है हमारे, दिखता ही नहीं, क्योंकि अवगुण अपने में होते तो दिखते कब है, जब अवगुण हमारे से दूर होते हैं। अगर गुण भी हमारे में कब दिखते हैं, जब हमारे से गुण दूर होते हैं। भाई आंख से सब कुछ दिखता है, आंख का कजरा आंख को नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता, नजीक अत्यंत नजीक नड़े होने से नहीं दिखता। ऐसे उनमें सदगुण सदाचार आत्मसात हो जाते हैं, इस वास्ते उनको अपने सदगुण सदाचार दिखते नहीं, और अवगुण रहता नहीं, अवगुण रहते ही नहीं, और थोड़ी बहुत कमी रहती है बड़ी भारी दिखती है। संतों ने कहा कि मौसम कौन कुटिल खल कामे, जिन तनु दियो ताई बिसरायो ऐसो नमक हरामे। थोड़ी देर भगवान को भूल जाते हैं तो कोई मौसम कौन कुटिल खल कामे, मेरे सामने कोई दुष्ट है ही नहीं, ऐसा काम है ही नहीं, जिन तनु दियो सो ही बिसरायो, जिसने शरीर दिया उस परमात्मा को भूल गए। तो थोड़ा अवगुण भी बहुत ज्यादा दिखता। पातंजलि महाभाष्य में आता है, पातंजलि सूत्र के जो व्यास भाष्य उसमें आता है, कहते साधन करने वाला होता है नेत्र की तरह, चक्षुपात्र कल्पो ही विद्वान, आंख में छोटा सा फूस भी बढ़ा दिखता है और सह नहीं सकती आप, अरे यहां तोले फिर पूरा कचरा पड़ जाए तो पर वही नहीं उसे लेते। ऐसे अंतर्गत जिसका शुद्ध होता है उसमें अवगुण जो है ठहर नहीं सकता, वो खटखट खटकता है, वो निकालने से ठीक होता है। और जो बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, अरे किसी के एक फुंसी हो जाए तो भी बड़ी बेचैनी कर देती है, और जिसके चेचक की बीमारी हो जाए माता निकल जाए उसमें पांच सात दस फुंसी अधिक होगी तो क्या पता लगे, कम होगी क्या पता लगे, सभी पीड़ वैसी हो रही है। ऐसे अंतर्गत जिनका अशुद्ध होता है उनमें अवगुणों का पता नहीं लगता, और जिनका अंतर्गत निर्मल होता है शुद्ध होता है उन्हें थोड़ा भी अवगुण सही नहीं होता, उनमें अवगुण रहता भी नहीं। एक देखो सिद्धांत की बात है, कोरे अवगुण किसी व्यक्ति में नहीं मिलेंगे, कोरे अवगुण ही अवगुण, आशु आशु संपत्ति देवी संपत्ति का नाम निशान ऐसा कोई नहीं मिलेगा, और आशु संपत्ति बिल्कुल नहीं है देवी संपत्ति ऐसा मिल जाएगा। कुमति सुमति सबके उड़ रहे, वेद पुराण संत अस कहे, सब रहते हैं गुण अवगुण, विश्व की न करता ये गुण दोषमय संसार सबका सब है, तो सब रहते हैं, परंतु संत हंस गुण कहे परिवारी विकार, संत महात्माओं में दुर्गुण दुराचार नहीं रहता, सब सदगुण सदाचार रहते हैं तो सदगुण सदाचार स्वतंत्र रह सकते हैं, और दुर्गुण दुराचार केवल केवल रह ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे आपको बताया ना सत्य भाषण की बात, तो सत्य भाषण करता है वो तो सत्य भाषण करता ही है, पर असत्य भाषण करने वाला, देखो आपको बात सच्ची बात कहता हूं आप देखो सच्ची कहता हूं, तो असत्य को भी सत्य की चोली में चढ़ाता है चढ़ाता है, ऐसे नहीं सत्यवाद करने वाले को कहना चाहते हो झूठी बात कहता हूं भाई, उसको झूठ का सहारा लेना नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य है वो परमात्मा के ऊपर टिका हुआ है, सत्य स्वरूप है, मूल है उसका, असत्य के मूल नहीं है, आज भी संपत्ति के मूल नहीं है, असुर है ना, असुर प्राण पूर्ण प्राण है, प्राण जाने वाले, और देव संपत्ति देव परमात्मा और वो रहने वाले, तो वो देवी संपत्ति उनके भीतर से होती है स्वतः स्वाभाविक, आज भी संपत्ति उसे कृत्रिम है बनावटी है, तो आज वो नहीं रहती वो बढ़ जाती, तो देवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मां सुता संपदम देवी अभिजातो से पांडव। भगवान कहते हैं अर्जुन भैया तुम देवी संपत्ति को लेकर प्राप्त हुए हो, जन्म लिया है, इस वास्ते तुम घबराओ मत, देवी संपत्ति तुम्हारी बात है ठीक है असली है, इस वास्ते इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। भगवान ने अर्जुन को दो बार मां सुचे कहा, मां सुचे संपदम देवी अभिजातो सी पांडव, और अहं पा सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि मां सुचे, तो इसे सिद्ध क्या हुआ कि साधन करता है उसके वहम रहता है कि मेरे अवगुण ज्यादा हैं, भगवान के नाना चिंता मत तेरी देवी संपत्ति को, कि आश्रय संपत्ति का अवगुण भी कोई रहता है बुरी लगती है ना, तो ये तो देवी संपत्ति है शोक नहीं करना चाहिए, और मेरे शरण होने पर क्या होगा और क्या नहीं शोक मत ठीक होगा, तो भगवान की तरफ चलने वाले साधकों को सिद्धों को भी चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान मासु जैसे शोक करने का निषेध कर। इस वास्ते मस्त रहकर भगवान के चरणों का आश्रय रखते हुए चलो, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस वास्ते सबको सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, ये अपना भाव सिद्ध करो, ठीक हो जाए। राम
काल रे भजन राधे मन अब हरि नाम पुकारी सुन मुरली वाला थारो भरो सो भारी सुन मुरली वाला थारो
सर्वस भगवत
सर्वस भ भगवद्गीता हमारो धन सर्व Yeah.